प्रकरण एक कर्ण। आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बात को सुनकर कुछ लोग चौंकेंगे, कहेंगे जो काल के मुख में जा चुके हैं वो कैसे बोलने लगे। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब ऐसे लोगों को भी बोलना पड़ता है। जब जब हाड़ मास के जीवित पुतले मृतकों की तरह आचरण करने लगते हैं, तब तब मृतकों को जीवित होकर बोलना ही पड़ता है। आह, आज मैं औरों के लिए कुछ कहने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस तरह की बात करने वाला मैं कोई बहुत बड़ा दार्शनिक नहीं हूँ। संसार मेरे सामने एक युद्ध क्षेत्र के रूप में उपस्थित हुआ, और मेरा जीवन भी क्या है, उस युद्ध क्षेत्र में बाणों का केवल एक तरकश। अनेक प्रकार की, अनेक आकारों की विविध घटनाओं के बाण उसमें ठसासस भरे हुए हैं। बस ऐसा ही केवल एक तरकश। आज मैंने अपने जीवन के उस तरकश को मैं सबके सामने अच्छी तरह खोल कर दिखा देना चाहता हूँ। उसमें रखे हुए विविध घटनाओं के बाणों को, बिल्कुल एक सी सभी घटनाओं के बाणों को मैं मुक्त मन से, अपने ही हाथों से सबको दिखा देना चाहता हूँ। अपने दिव्य फलकों से चमचमाते हुए अपने स्पर्श और आकर्षक आकार के कारण तत्क्षण मन को मोह लेने वाले, साथ ही टूटे हुए कुछ पुच्छ के कारण दयनीय दिखाई देने वाले तथा जहाँ तहाँ टूटे हुए फलकों के कारण अटपटे और अजीब से प्रतीत होने वाले इन सभी बाणों को, और वे भी जैसे हैं वैसा ही मैं आज सबको दिखाना चाहता हूँ। विश्व की श्रेष्ठ वीरता की तुला पर मैं उसकी अच्छी तरह परख करना चाहता हूँ। धरणीतल के समस्त मातृत्व के द्वारा आज मैं उनका वास्तविक मूल्य निश्चित करना चाहता हूँ। पृथ्वी तल के एक एक की गुरुता आज मैं उनका वास्तविक स्थान निर्धारित करना चाहता हूँ। प्राणों की बाजी लगा देने वाली मित्रता के द्वारा मैं आज उनकी परीक्षा कराना चाहता हूँ। हार्दिक पुहारों से भीग जाने वाले बंधुत्व के द्वारा मैं उनका वास्तविक मूल्यांकन कराना चाहता हूँ। भीतर से मेरे मन की एकदम गहन गंभीर अंतरतम से एक आवाज बार बार मुझको सुनाई देने लगी है। दृढ़ निश्चय के साथ जैसे जैसे मैं मन ही मन उस आवाज को रोकने का प्रयत्न करता हूँ, वैसे ही वैसे हवा के तीव्र झोंके से अग्नि की ज्वाला जैसे बुझने के बजाय पहले की अपेक्षा और अधिक जोर से भड़क उठती है। वैसे ही वह आवाज बार बार गरज कर मुझसे कहती है, कहो कर्ण, अपनी जीवन कथा आज सबको बता दो। वह कथा तुम्हें ऐसी भाषा में कहो कि सब समझ सके, क्योंकि आज परिस्थिति ही ऐसी है। सारा संसार कह रहा है, कर्ण तेरा जीवन तो चिथड़े के समान था। कहो, गरज कर सबसे कहो कि वह चिथड़ा नहीं था, बल्कि वह तो गोटा किनारा वाला एक अतलसी वराज वस्त्र था। केवल परिस्थितियों के निर्दय कटीले बाणों में उलझने से ही उसके सहस्त्रों चिथड़े हो गए थे। जिस किसी के हाथ में पड़े उसने मनमाने ढंग से उसका प्रचार किया, और फिर भी तुमको उस राज वस्त्र पर इतना अभिमान क्यों है? वस्तुओं के किसी ढेर से सुंदर संदूक की तह में पड़े हुए नए निकोर और अखंड राज वस्त्र की अपेक्षा भयंकर तांडव करने वाले काल के झंझावत से अकेले जूझते हुए चीर चीर होने वाला तेरा यह राज वस्त्र क्या कम मूल्यवान था? या आज सबको आंखें खोलकर अच्छी तरह देख लेने दे, कान खोलकर अच्छी तरह सुन लेने दे। वीरों की कहानियां सदैव ही बड़ी रुचि से सुनने वाले तथा दूसरे ही क्षण उतनी सरलता और निश्चिंतता से बिल्कुल ही भूल जाने वाले इस पागल संसार को तेरी यह कहानी क्या कभी जोर से झकझोर सकेगी? क्या उसमें इतनी प्रचंड शक्ति है? विश्व की चरम सत्यता पर जिनका अखंड विश्वास है, वे लोग मृत्यु को एक खिलौना समझते हैं। सिंह की सी छाती वाले जिन वीरों का इस धराधाम पर अस्तित्व है, वे सभी लोग आज तुम्हारी इस कहानी को सुनना चाहेंगे। आह, यह क्या केवल कहानी है? यह तो एक महान सत्य है, और सत्य देखने वालों की और सुनने वालों की इच्छा का विचार कभी नहीं किया जाता। वह सदैव जिस रूप में होता है उसी रूप में सामने आया करता है, उदित होते हुए सूर्यदेव की तरह। कथा कोई भी हो, उसको सुनते समय श्रोता यह आशा करते हैं कि उसमें मदिरा के मधुर चषक होंगे, नर्तकियों के नाद में पदन न्यास होंगे, और होंगे स्त्री पुरुषों के आवेगपूर्ण आलिंगन। वे उसमें एक ऐसा नशा चाहते हैं जो क्षणभंगुर जीवन की प्रतीति को एकदम भुला दे। जो कहानी मैं कहने जा रहा हूँ मेरे उस जीवन गाथा में मदिरा के ऐसे चषक नहीं हैं, मन को धीरे से गुदगुदाने वाले नर्तकियों के पदन्यास भी नहीं हैं, उसमें है केवल संग्राम, भिन्न भिन्न प्रकार के भावों को कपा देने वाला संग्राम। मैं तो तन मन से लड़ने वाला केवल एक असभ्य सैनिक हूँ। मैं अपनी कहानी आज अपने केवल अपने ही समाधान के लिए कह रहा हूँ। मनुष्य अपने मन की बात जब तक कहीं कह नहीं लेता तब तक उसका मन हल्का ही नहीं होता, इसीलिए मैं अपनी यह कहानी मुक्त मन से कहने जा रहा हूँ। लेकिन अब मेरे सामने वास्तविक कठिनाई तो यह है कि अपने इस संग्राम कथा को मैं कालक्रमानुसार कैसे कहूँ, क्योंकि कड़कड़ाती हुई बिजली की कानों के पर्दे फाड़ देने वाली मर्मभेदी आवाज़ सुनकर वन्य घोड़ों के झुंड के अनेक घोड़े जैसे जिधर रास्ता मिलता है उधर ही दौड़ने लगते हैं, वैसे ही अनेक घटनाएं उस समय मेरी आंखों के सामने कालक्रम को छोड़कर इधर उधर मनचाही दौड़ लगा रही। उसको कालक्रमानुसार कैसे जोड़ूं यह स्वयं मुझे भी नहीं सूझ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन इस समय बार बार मेरी आंखों के सामने जो खड़ी हो रही है वह गंगा माता के पवित्र और रमणीय तीर पर बसी हुई चंपा नगरी। चंपा नगरी मेरी जीवन संहिता का वह सुंदर मोड़ है जो मुझको बहुत ही प्रिय लगता है। उस नगरी की केवल स्मरण मात्र से ही मेरी स्मृतियों के अरण्य में एकदम खलबली मच जाती है और घटनाओं के हरिणों के झुंड छलांगे मारते हुए दौड़ने लगते हैं। कोई कहता है कि स्मृतियाँ मयूर पंख जैसी होती हैं, तो किसी का कहना है वे बकुल के फूल की तरह होती हैं जो अपने सुगंध को पीछे छोड़ जाते हैं, लेकिन मैं यह कभी स्वीकार नहीं कर सका। स्मृतियाँ सदैव ही हाथी के पैरों जैसी होती हैं, वे मन की आर्द्र भूमि पर अपना गहरा चिन्ह पीछे छोड़ ही जाती है। कम से कम मेरी तो सभी स्मृतियाँ ऐसी ही हैं। चंपा नगरी मेरे जीवन की मरुभूमि पर कालरूपी गजराज द्वारा अंकित ऐसा ही एक गहरा और स्पष्ट चिन्ह है। मेरी जीवन यात्रा में वह सबसे अधिक शांत और स्मरणीय लगने वाला आश्रय स्थल। कुछ लोग जीवन को मंदिर कहते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरा जीवन इस प्रकार का कोई मंदिर कदापि नहीं है, और यदि वह मंदिर है भी तो चंपा नगरी उस मंदिर की एकमात्र मधुर घंटी है। गंगा माता के विशाल और रमणीय किनारों पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, कैसा है वह। दो, लता वृक्षों से और पशु पक्षियों से भरी हुई प्रकृति देवी की गोद में लेटा हुआ मेरा छोटा सा गांव था चंपा नगर। चातक, चकोर, कोकिल, भारद्वाज, सारंग आदि असंख्य पक्षियों के मधुर चहचहाट से प्रत्युषा में जगने वाला, गायों के रंभाने के साथ ही प्रातःकाल नित्य प्रति के कामों में लगने वाला, चिलचिलाती दोपहरी में कदम्ब की घन शीतल छाया में शांति से विश्राम करने वाला, घंटियों की तालबद्ध आवाज के साथ गायों के साथ सायं समय धूल की बादल उड़ाते हुए लौटने वाला और रात को गंगा माता के तीर पर से आने वाले शीतल मंद समीरण के लहरों को देह पर ओढ़कर एक निरपराध बालक की तरह चुपचाप सो जाने वाला मेरा वह सुंदर बचपन यहाँ इस चंपा नगरी में ही बीता। हाँ, यही व्यतीत हुआ। एक बार धनुष के छूटे हुए बाण की तरह वह फिर कभी लौटकर मेरे पास नहीं आया, परंतु उसके स्मरण मात्र से ही क्षितिज तक फैला गंगा माता का विस्तृत पात्र मेरी आंखों के सम्मुख खड़ा हो जाता है। शुभ्र नीले जल का क्षितिज तक फैला हुआ वह विशाल साम्राज्य, उस जल की एक एक बूंद मुझको अच्छी तरह जानती है और मैं भी उसकी एक एक बूंद से अच्छी तरह परिचित हूँ। इसी गंगा माता के किनारे फैली हुई कोमल आर्द्र बालू की छाती पर दौड़ते समय मेरे छोटे छोटे निष्प्रिय पैरों के चिन्ह अंकित हुए हैं। यहीं पर नटखट वायु के झोंकों ने मेरे देह पर लिपटे हुए मेरे उत्तरीय को छिड़खानी कर अनेक बार उड़ाया है, और इसीलिए चंपा नगरी की स्मृति के साथ ही बचपन में देखी हुई इस ओर से उस छोर तक फैली हुई गंगा माता मेरी आंखों के सम्मुख खड़ी हो जाती। बचपन आखिर क्या है, इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर अच्छी तरह क्या कोई दे सकता है। अनेक लोगों ने अनेक प्रकार उसका वर्णन किया है, परंतु यदि मुझसे पूछा जाए तो मुझको तो वह सदैव रथ की तरह लगता आया है। एक ऐसा स्वच्छंद रथ जिसमें मुक्त और अनिर्बंध कल्पनाओं के घोड़े जुते हुए होते हैं। दूर तक दिखाई देने वाला गंगा का पानी सचमुच ही कहीं नील गगन का स्पर्श कर रहा है क्या, यह देखने के लिए वह रथ उसके असंख्य लहरों पर चक्कर लगाकर क्षण भर में क्षितिज तक दौड़ लगा आता, तो कभी कभी वह रथ आकाश में जल मिलाने वाले असंख्य तारे किसमें ऐसे जड़े हुए हैं जो वे नीली छत से निकलकर इन से पृथ्वी तल पर नहीं गिर पड़ते हैं, यह देखने के लिए अंतरिक्ष में बड़ी ऊंचाई तक छलांग मार आता है। 3. मैं और मेरा छोटा भाई शोण, हमारा वह छोटा सा संसार शोण, हाँ शोण ही, उसका मूल नाम था शत्रुंतप, लेकिन सब लोग उसे शोण ही कहते थे। शोण मेरा छोटा भाई था। यूं तो विकृत नामक मेरा एक और भी भाई था, लेकिन वह बचपन में ही विकटों के राज्य में अपनी मौसी के पास चला गया था। शोण और मैं हम दो ही रह गए थे। मेरे बचपन का संसार मेरी और उसकी स्मृतियों से भरा हुआ था। चंपा नगरी की शुद्ध हवा में पलने वाले दो भोले भाले प्राणों का अद्भुत कल्पनाओं से भरा हुआ छोटा सा संसार था वो। वहाँ झूठी प्रतिष्ठा के बनावटी दिखावते नहीं थे, या अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को फूटी आँख से भी न देखने सकने वाली असूया नहीं थी। वह केवल दो भाइयों का निस्वार्थ विश्व था, और उस विश्व के केवल दो ही द्वारपाल थे, एक हमारी माता राधा और दूसरे हमारे पिता अधीरथ। आज भी उन दोनों की स्मृतियाँ मेरे हृदय के एक अत्यंत कोमल तार को झंकृत कर देती, और अनजाने ही कृतज्ञता के से कुछ बोझिल से तथा ममता से कुछ रससिक से दो अश्रुबिंदु तत्क्षण मेरी आँखों में छलक आते, लेकिन क्षण भर के लिए ही। तुरंत मैं उनको पोछ लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आंसू दुर्बल मन का प्रतीक है। संसार के किसी भी दुख की आग अश्रु के जल से कभी बुझा नहीं करती, लेकिन फिर भी जब तक आंसू की ये दो बूंदें छलक नहीं पड़ती, तब तक मुझको कभी यह प्रतीत ही नहीं होता कि मेरा मन हल्का हो गया है, क्योंकि आंसू की इन दो बूंदों के अतिरिक्त अपने जीवन में मैं उनको ऐसा कुछ भी नहीं दे सका जो बहुत अधिक मूल्यवान हो, और इनकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान कोई अन्य वस्तु है जो माता पिता के प्रति प्रेम की प्रतीक स्वरूप दी जा सकती है, ऐसा मैं समझता भी नहीं। मेरे माता पिता ने कभी किसी प्रकार की आशा मुझसे नहीं की थी। उन्होंने मुझको जो कुछ दिया था वह मेरा प्रेम ही था, इसीलिए उनके स्मरण से मेरी आंखों में कृतज्ञता से कुछ बोझिल से तथा ममता से कुछ रससिक्त से केवल दो अश्रुबिंदु ही भर आते हैं। 4. मेरी माता तो ममता का विशाल समुद्र ही थी। मुझको बचपन से ही नगरजन वसुसेन कहते थे। मेरा छोटा भाई शोण मुझको सदैव वसु भैया कहता था। माँ तो मुझको दिन में सैकड़ों बार वसु वसु कहकर बुलाती थी। उसने मुझको केवल अपना दूध ही नहीं पिलाया था, बल्कि उसके विशुद्ध प्रेम का अमृत भी मैं अब तक जी भर कर पीता आया था। सबको समान भाव से प्रेम करने के लिए ही मानव उसका जन्म हुआ था। सारा चंपानगर उसको राधा माता कहता था। सबके लिए असीम कष्ट सहने की शक्ति और हृदय में अमित ममता होने के कारण उसकी बात कभी व्यर्थ नहीं जाती थी। मेरे कानों में दो जन्मजात कुंडल थे। उनकी चर्चा वह नगर के लोगों से प्रायः करती रहती थी। मैं क्षण भर के लिए भी आंखों से ओझल हो जाता था तो वह घबरा जाती थी, अत्यंत व्याकुल हो जाती थी। पड़ोसियों के यहाँ जाकर वह मुझको ढूंढने का प्रयत्न करती, मुझको अपने सामने बैठाकर वह घंटों अकारण मेरे कानों के कुंडलों की ओर टकटकी बांधकर देखती रहती। देखते देखते वह अपने शुद्ध बुद्ध को खो देती। बार बार मेरे सिर पर हाथ फिराकर वह प्रेम से मुझसे कहती, वसु गंगा की ओर भूलकर भी मत जाना। अच्छा, क्यों नहीं जाऊं? मैं पूछता। देखो, बड़े लोगों का कहना मानते हैं, जब जाने को मना किया जाए तो नहीं जाना चाहिए। तू सचमुच बहुत डरपोक है माँ। अरे, चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं रे वसु, मुझको एकदम पास खींच कर मेरे बालों में अपनी लंबी उंगलियां फिराती हुई वह मुझसे पूछती, वसु मैं तुझको अच्छी लगती हूँ या नहीं? आहा, कहकर मैं सिर हिलाता। मेरे कानों में लय के साथ हिलने वाले कुंडलों की ओर विस्मय से देखती हुई वह कहती, तो फिर मेरा आदेश समझकर कभी गंगा की ओर मत जाना। वह मुझको कसकर जकड़ती हुई कहती। उस समय उसकी आंखों में एक अनजाना भय तैरने लगता था। उसका मन रखने के लिए मैं कहता, तू कहती है तो नहीं जाऊंगा, बस अब तो ठीक। यह सुनते ही वात्सल्य से अभिभूत होकर वह मुझको एकदम पास खींच लेती और आलिंगन में कस लेती। मेरे सिर और कानों को पटापट चूमती। उस समय मेरी इच्छा होती कि मैं इसी तरह गोद में समा जाऊं। उसकी गोद में पड़े पड़े ही मैं विचार करता, माँ गंगा माता के जल से भला इतना क्यों घबराती, और मुझको तो गंगा माता के प्रति अद्भुत आकर्षण था। उसकी लपलपाती हुए शंख लहरों से घंटों तक बैठे बैठे बातें करते रहना मेरा सर्वाधिक प्रिय छंद था। माँ को यदि वह ज्ञात हो जाता तब निश्चय ही मुझको ढूंढती हुई वह सीधी गंगा के किनारे तक आ पहुँचती। नहीं जी, कुछ भी हो जाए मैं सदैव नदी के किनारे पर जाता हूँ। हाँ, यह बात तो कभी ज्ञात नहीं होनी चाहिए, मैं निश्चय कर लेता और फिर अपने इस बात को गुप्त रखने के लिए रंगीन सीपियाँ और बकुल के खिले हुए पीले फल मुट्ठी भर 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 कर शोण को दिया करता। 5। मेरे पिता कौरव राष्ट्र के रथ के राजरथी थे। वे अधिकतर कौरवों के राजधानी हस्तिनापुर में ही रहा करते थे। वह नगर तो बहुत दूर था, कभी कभी वे वहाँ से एक बड़ा रथ लेकर चंपा नगरी में आते थे। उस समय मेरे और शोण के उत्साह का रूप कुछ और ही होता था। जैसे ही पर्णकुटी के द्वार पर रथ खड़ा होता था, शोण उसमें कूद पड़ता और घोड़ों की बलगाएं पिताजी के हाथों से हठात अपने हाथ में लेकर जोर से मुझको पुकारता, वसु भैया, अरे जल्दी आ, चलो हम गंगा के किनारे से सीप ले आए। उसकी पुकार सुनकर मैं अपूप खाना वैसे ही छोड़कर पर्णकुटी से बाहर आता। फिर हम दोनों मिलकर पिताजी के रथ में बैठकर वायु वेग से नगर के बाहर गंगा के किनारे की ओर जाते। हल्के पीले रंग के वे 5 घोड़े अपने पुष्ट पूंछों के बालों को फुलाकर कान खड़ी कर स्वच्छंद उछलते जाते। उनको संयत करते करते बालक शोण एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता। ऊपर के दांतों से नीचे का होठ जोर से चबाता हुआ वह उनको संयत कर रास्ते के मोड़ों पर सफाई से निकालने का व्यर्थ प्रयत्न करता और अंत में थक कर सहायता के लिए मुझको बुलाता। उसके हाथों पर वलगाओं के चिन्ह अंकित हो जाते। उस समय उसकी आवाज़ इतनी मृदु हो जाती कि मुझको उससे विलक्षण प्रेम होने लगता। फिर मैं उसके साथ हाथ से वलगाएं अपने हाथ में लेता और प्रतोद का दंड उल्टा कर घोड़ों के आयाल तितर बितर कर देता। हा हा कहकर उनको दौड़ाने के लिए प्रतोद के डंडे से जब वह मारता तब घोड़े चेत कर पहले की अपेक्षा और अधिक तेज दौड़ने लगते। अपने मन की सी हो गई है यह देख कर शोण आनंदातिरेक से तालियां बजाकर मुझको उत्साहित करता और फिर बातों ही बातों में हम दोनों लगभग आधा योजन की दूरी पार कर गंगा माता के किनारे पर आकर रुकते। शोण झट से रथ से कूद कर हरण की तरह चौकड़ी भरता हुआ किनारे की ओर दौड़ता। उसके छोटे छोटे पैरों की एक लंबी पंक्ति किनारे के आर्द्र बालों में अंकित दिखाई पड़ने लगती, लेकिन मैं उसी तरह बैठा रहता जैसे मेरे हाथ पर सुन्न हो गए हों और मैं रथ से एक टक उस पानी की ओर देखता रहता। अकारण ही मुझको ऐसा लगता कि अवश्य इस पानी से मेरा कुछ संबंध है जो कहा नहीं जा सकता। उसी क्षण दूसरा विचार आता, छी भला पानी से मनुष्य क्या क्या नाता हो सकता है। प्यास से व्याकुल प्राणी को क्षण भर की तृप्ति प्रदान करने वाला एक साधन मात्र है वो। हाथ से छूट कर वलगाएं न जाने कब नीचे गिर पड़ती। अपनी छोटी छोटी आंखों से मैं उस पात्र को यथाशक्ति गटागट पी लेता। उस समय मेरी इच्छा होती कि यदि मेरे संपूर्ण शरीर में आँख होती तो कितना अच्छा होता। मैं अपनी तंद्रा से तब जागृत होता जब शोण प्रश्न करने लगता। अनेक रंग की सीपियाँ मिल जाने के कारण उसके पैर धरती पर नहीं रहते। वह मुझ पर प्रश्नों की बौछार कर देता, भैया ये सीपियाँ क्या पानी से ही बनती हैं रे? हाँ। इतने से उसका समाधान न होता, वह फिर पूछता, फिर तो इन पर ये सारे रंग पानी नहीं किए होंगे? हाँ। तो फिर पानी में ये रंग क्यों नहीं दिखाई पड़ते? उसके प्रश्नों का उत्तर देना कभी कभी मैं टाल देता था, क्योंकि मैं जानता था कि एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न उसके पास अवश्य तैयार होगा, और सच पूछो तो कभी कभी उसके प्रश्न का उत्तर मुझे भी ज्ञात नहीं होता था। चल, हम लोगों को बहुत देर हो गई है, यह कहकर मैं उसके मस्तिष्क से उन प्रश्नों को दूर करने का प्रयत्न करता। फिर हम दोनों लौट आते। आते समय संध्या हो जाने के कारण शेन, कोकिल, कपूत, भारद्वाज, पत्ररथ, क्रौंच आदि अनेक पक्षियों के झुंड के झुंड चित्र विचित्र आवाज करते हुए धूम मचाते नीड़ों की ओर लौटते हुए हमको दिखाई देते। रथ नीड़ से बाहर झाँक कर उन झुंडों की ओर एक टक देखता हुआ शोण मुझसे अनेक प्रश्न पूछता, लेकिन उस समय मेरा ध्यान उसकी ओर बिल्कुल नहीं होता था। उस समय सूर्यदेव पश्चिम की ओर स्थित दो अत्युच्च पर्वतों के पीछे प्रवेश कर रहे होते थे। दिन भर अविरत दौड़ने पर भी उनके रथ के घोड़े जरा भी थके हुए नहीं होते थे। वे दो पर्वत मुझको उनके प्रसाद के विशाल द्वार पर खड़े दो द्वारपाल से लगते थे। उस तेज पुंज की बिंब की ओर देखने पर मेरे हृदय में न जाने क्यों एक अजीब सी व्याकुलता उठने लगती। अब क्षण भर में ही वह तेज पुंज अपने दृष्टि की ओट में हो जाएगा। इस कल्पना से ही वियोग की एक प्रचंड लहर अकारण ही मेरे नस नस में फैल जाती। मैं एकटक उस बिंब की ओर देखता रहता। सोण मुझको जोर से झकझोर कर आकाश में शोर मचाता हुआ जाता हुआ गरुण पक्षियों का झुंड दिखाता। मैं क्षण भर उन विशाल काय वन पक्षियों की ओर देखता। उन समस्त पक्षियों की अपेक्षा ये बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ा जाते थे। सोण पूछता, भैया ये कौन से पक्षी हैं रे? गरुण, सभी पक्षियों के राजा। भैया तो जाएगा क्या रे इन गरुणों की तरह खूब खूब ऊंचा? वह नरगल प्रश्न पूछता। पगले, मैं भी क्या पक्षी हूँ जो ऊंचा जाऊंगा? न सही पक्षी, अभी थोड़ी देर पहले इतने तेज दौड़ाते हुए घोड़े कैसे संभाल लिए थे तूने? अच्छा भाई, मैं जाऊंगा गरुण की तरह खूब ऊंचा, इतना ऊंचा कि तू कभी देख नहीं पाएगा। बस अब ठीक है ना? इस उत्तर से वह संतुष्ट हो जाता। मेरे प्रति आदर का एक स्निग्ध भाव उसकी आंखों में स्पष्ट झलकने लगता। मैं पुनः पश्चिमी क्षितिज की ओर देखने लगता और अंत में मैं ही उससे एक प्रश्न पूछता, सोण वह सूर्यबिंब देख रहे हो? उस बिंब की ओर देखने पर क्या अनुभव कर रहे हो तुम? मुझे लगता कि वह क्षण भर ध्यान से उस बिंब की ओर देखेगा वैसा मुझको लगता है। उसी तरह की कोई बात अपने शब्दों में कहेगा, लेकिन जैसे ही वह सूर्यबिंब की ओर देखने लगता उसकी नन्ही नन्ही आँखें उस तेज से एकदम मिच जाती और फिर थोड़ी देर बाद आँखें मीणता हुआ मेरे कानों की ओर देख कर वह जल्दी जल्दी कहता, तेरे चेहरे जैसा लगता है वह वसु भैया। मैं अपने कानों से हाथ लगाता, दो मांसन कुल्डर हाथ में आ जाते, कहते हैं कि ये मेरे जन्म से ही है। सोण की शिकायत शुरू हो जाती, तुझ पर ही माँ का प्यार अधिक है भैया, देख ले इसीलिए उसने तुझको ये कुंडल दिए हैं। मेरे पास कहाँ है कुंडल? उसके उद्गारों से मैं थोड़ी देर के लिए विचारमग्न हो जाता। पश्चिम की ओर आंखों से ओझल होते हुए उस तेजस्वी बिंब की ओर मैं फिर एक बार ध्यानपूर्वक देखता। मेरे छोटे से मन में भावों का तूफान सा आ जाता। एक हाथ से घोड़ों की वलगाएं संभालता हुआ सोण की दृष्टि बचाकर आंखों से ओझल होने वाले उस तेज को दूसरे हाथ से विदाई देता। मन में एक और ही तरह की व्याकुलता होने लगती। ऐसा लगने लगता है जैसे अपने पास से कोई वस्तु अब दूर दूर जा रही हो। आवेश में मैं हाथ में लगे प्रतिरूप का प्रहार घोड़ों की पीठ पर करने लगता। अपने खुर उछाल कर रास्ते पर धूल उड़ाते हुए वे हिनहिनाते हुए वायुवेग से दौड़ने लगते। पास बैठा हुआ सोण दौड़ते हुए घोड़े पीछे छूटते जाते। अशोक, ताल, किंशुक, मधुक, पाटल, तमाल, कदम, शाल, सप्तपर्ण आदि के ऊंचे ऊंचे घने पत्तों वाले वृक्ष, इनमें से किसी का भी मुझको भान नहीं रहता। केवल सामने का पीछे भागता हुआ मार्ग और उसके मोड़ बस यही दिखाई देते। मेरे मन में विचार कौन जाता, पीछे छूटते हुए इस रास्ते के साथ साथ मैं प्रकाश के साम्राज्य से किसी अंधकार में भयानक समुद्र की ओर खींचा चला जा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि अब रात के 12 घंटे ऐसे ही एकाकीपन में बीतेंगे। पर्णकुटी में आते ही सोण अपने रंग बिरंगी सीवियों की कमाई को बड़े उत्साह से माँ को दिखाता। उसकी सराहना करते हुए माँ मुझसे पूछती, वसु तू क्या लाया है रे? पहले तो मैं एकदम घबरा जाता, तत्क्षण कोई उत्तर ही न सूझता क्योंकि मैं तो कुछ लाता ही नहीं था। फिर जैसे जैसे अपने को संभालता मैं कहता, मैं सोण को वापस लाया हूँ, यही बहुत समझो माँ। अरे नहीं तो यह रात भर सीपियाँ इकट्ठी करता हुआ वहीं बैठा रहता। वाह वाह, तू लाया है मुझको? अरे मैं ही लाया हूँ इसे लौटाकर, नहीं तो यहीं वहाँ बैठा रह जाता प्रातःकाल तक उस बिंब की राह देखता हुआ। सोण अपना सिर हिलाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करता। मेरी माँ मेरी ओर बड़े ध्यान से देखने लगती। मेरे चेहरे की ओर वह इतने ध्यान से क्यों देखती थी यह मेरी समझ में नहीं आता था। मैं वहाँ से एकदम बाहर चला जाता।